आज हम जब केले से लेकर प्यारे बाबा के दिव्य चरित्र अनमोल अनुभव के रूप से भिन्न भिन्न बहनों के द्वारा सुन रहे हैं, तो मैं ये भी कहूंगी कि उन अनेक आत्माओं के बीच मैं भी एक पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ, जिसने आते ही मरजीवा जन्म ऐसा लिया कि मेरा पिछला परिचय, पिछला नाम भी किसी को पता नहीं है। आते साथ ही भगवान ने जो मुझे अपना नाम देना था वो दे दिया। किसी का जन्म ज्ञान से हुआ, योग से हुआ, इच्छा से हुआ, लेकिन मुझे भगवान ने दिव्य दृष्टि से जन्म दिया, क्योंकि मेरी भक्ति जो थी ना वो इससे पहले वाले जन्म में पूरी हो गई थी। इस जन्म में इतना भक्ति का कोई पाठ नहीं था, और जब मैं ज्ञान में आई तो उस समय मेरी उम्र थी 12 वर्ष, और 12 वर्ष के जीवन में 84 जन्म में अनेक जन्मों का हिसाब किताब पूरा करना है ना, तो हमारा भी अनेक हिसाब किताब इस जन्मों में पूरे हुए। जन्म तो मेरी माँ ने दिया, लेकिन अडॉप्ट तो मुझे मेरी मासी ने किया, और 12 साल तक मैं अपनी मासी के वहाँ पालना लेती रही, तो उनको कोई संतान नहीं थी। अब उस घर के अंदर मैं एक बच्चा थी दो भाइयों के बीच में, तो मेरे को इच्छाएं तो सब मेरी पूरी थी, इसलिए भगवान को प्राप्त करने की या भगवान को जानने की कोई इतनी समय नहीं था, ऐसे कहें तो वो समय नहीं आया हुआ था। लेकिन ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के कारण अनेक प्रकार के भगवानों की भक्ति हमारे वहाँ होती थी। जो मेरी दादी थी वो श्री कृष्ण की पूजा करती थी, और जो मेरे पिताजी थे वो शिव की पूजा करते थे, और जो मेरी माँ थी वो दुर्गा की पूजा करती थी, अम्बा की पूजा करती थी। तो सारे देवी देवताओं की पूजा हमारे घर में होती थी, लेकिन उनका आशीर्वाद जो होता था ना वो मुझे ही मिलता था। आप पूछोगे कैसे मिलता है, क्योंकि वो नीचे मंदिर होने के कारण पुजारी आता था ना, पूजा करता था, लेकिन जब वो आशीर्वाद देता था ना, और आशीर्वाद में विशेष कोई मिठाई या कोई फल होता था ना, तो वो लेने के लिए मैं सबसे पहले जाती थी जब आशीर्वाद का समय आया है। तो इसलिए भक्ति का भी आशीर्वाद मेरे को मिलता गया, तो ज्ञान में भी आशीर्वाद ही मिला, तो मैं अब तक भगवान के वरदानों से जन्म लिया, भगवान के वरदानों से पल रही हूँ, और भगवान के ही दिए हुए वरदानों से अनेक प्रकार के मैंने अनुभव किए। तो वैसे मुझे ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक बार की बात ये थी कि एक बार मेरी दादी बीमार हो गई थी, तो उसने मुझे कहा तुम श्री कृष्ण को आज ना नहलाओ और कपड़े पहनाओ। तो उसमें तो मैं बड़ी होशियार थी, क्योंकि गुड़िया गुड्डे को कपड़े पहनाती थी ना, इसलिए मैं पहनाए। अचानक क्या हुआ कि मेरे हाथ से वो श्री कृष्ण की मूर्ति थी ना वो छूट गई, छूट गई, तो उसमें एक जैसे नहीं दब जाता है, पीतल तो था ना वो दब गया। तो मेरी दादी बहुत चिल्लाई, मूर्ति खंडित कर दी, इसकी पूजा थोड़ी होगी, अब इसको प्रवाह कराना पड़ेगा। तो मैं 10-11 साल की थी, अब मूर्ति टूट जरा सा लग गया तो क्या हुआ, हमको भी इतना लगता है ना। तो हमने कहा कोई बात नहीं, इसको बाम लगा देते हैं। तो हमको अकल तो कम थी ना उस समय, इसलिए वो चिल्लाती नहीं, फिर हमको कहा कि अब इसको प्रवाह करा देना है। तो मेरे कहा तुम रहने दो, रख दो वहीं, रख दी। शाम को पंडित जी आए तो उनको बोला, राधे और कृष्ण दोनों को मूर्तियों को ना इन्होंने उसको दिया कि इसको प्रवाह करा दो गोमती में। मेरे को बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। मैंने कहा जरा सा लग गया और ये प्रवाह करा दिया, भगवान खत्म हो गया। और चलो एक ही भगवान खत्म हुआ, वो राधा जी को भी डुबो दिया। मेरे को बड़ा शौक लगा कि ऐसे भगवान मर जाता है, ऐसे भगवान का ये पूरा हो जाता है। तो मेरे को तो उस दिन से लेकर मुझे भगवान से जो आस्था थी ना वो हट गई, भगवान मर गया। और एक भगवान मरा, भगवान के साथ में राधा भी चली गई। ये मुझे डर लग गया कि अगर एक आदमी जाएगा तो उसके साथ में दूसरे को भी बहा देंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। तो भगवान पर से मेरी जो आस्था थी ना वो वैसे भी खत्म हो गई, जो थोड़ी बहुत होगी वो खत्म हो गई। फिर मैं ठीक है आशीर्वाद ले लिया, चलो चल रहे हैं, ऐसे चलता था। तो क्या हुआ, एक बहन मेरी एक मासी थी, वो बर्मा में रहती थी, तो उसकी लड़की की शादी बनारस में हुई। तो कुछ दिन के बाद उसके पति लखनऊ में आए। तो उन दिनों ये बहनें नई नई ना सर्विस पर निकली थी, ये 54 और 53 की बात है, 54 की बात है 54 की। तो वहाँ ये सब एक प्रचार फैला हुआ था, 7 दिन में भगवान के दर्शन, 7 दिन में भगवान के दर्शन। तो हमको तो उस समय समझ नहीं थी ना, पर क्या हुआ, हम एक दिन अपनी मासी के वहाँ गए ना, तो वहाँ बहुत से और उनके बहुत से भाई लोग थे, बात कर रहे थे, चलो आज बहनों के पास चलेंगे, 7 दिन में भगवान के दर्शन है, ये करेंगे। मैंने कहा है मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ में, कहते नहीं तुम्हारे जाने लायक जगह नहीं है, हम लोग जाएंगे। तो क्या हुआ, हमारे जीजा जी जो थे ना उस बहन के पति, वो जाने लगे ज्ञान में। वो वैसे भी बड़े देवता पुरुष हैं, इस कलयुग की दुनिया के अंदर इतना उनका स्वभाव अच्छा है, संसार की सब बातों में न्यारे। तो वो ज्ञान लेने लगे और उनको अच्छा लगा। तो जब मैं उसके वहाँ जाऊँ तो वो मुझे नीचे बिठा लेते थे, बिठा के कहते थे आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, शांत स्वरूप है। जब देखो ना, जब जाए ना तो वो नीचे बिठा ले और यही बात कहे। एक बार समझ में आ गई ना आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, बार बार रोज रोज रिपीट थोड़ी करना होता है। मैंने अपनी बहन को बोला, देखो भाई ये जीजा जी रोज मुझे नीचे बिठा लेते हैं, मैं इतनी बुद्धू नहीं हूँ। वो इतनी समझ आ गई आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। तो वो ज्ञान को नहीं मानती थी, वो कहती देखो अब उस लड़की को मत बुलाना तुम, और उसको समझ में आ गया है तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो चलो उनसे वो, पर वो फिर भी मेरे पर कृपा करते थे, जब जाऊँ ना तो वो फिर भी यही ज्ञान दोहरा देते थे, आत्मा का परमात्मा आया है क्या। मैं समझ नहीं थी, इतनी बुद्धि विकसित नहीं थी ना, तो बस दो ही लाइन समझ में आई कि आत्मा अमर है, श्री नाशवान है। थोड़े दिन बाद क्या हुआ कि 5-6 मास के बाद, बस इतना ही मुझे ज्ञान था, इससे आगे नहीं आया, उनके बच्चे की डेथ हुई। तो मैं जब वहाँ अचानक पहुंची तो वहाँ पर तो थोड़ा सा रोना धोना सब था। तो मेरे को आया आत्मा महरे शरीर नाशवान है, फिर मनुष्य क्यों रोता है, ये मुझे सवाल था उन सबको देख के। तो मेरी, मैं नहीं रोई, मेरे को अंदर बस यही दो शब्द घूमते थे, आत्मा महरे शरीर नाशवान है, मनुष्य क्यों रोता है, सब ये झूठी बातें हैं, ऐसे आता था। 4-5 दिन के बाद फिर मेरे अंदर ये आया, ये क्यों हमको ज्ञान देते थे और आज रोते हैं, ये तो ठीक नहीं है ना, ज्ञान ठीक नहीं इनको मिला है। 4-5 दिन के बाद हम उनके वहाँ गए तो हमने कहा उनको, ये आपने जहाँ से ज्ञान लिया है ना वहाँ चलो, तो आपको अंदर जो अशांति वो हो जाएगी। और मैं भी पूछूंगी तो सही कि जब आत्मा मरे शरीर नाशवान है मनुष्य क्यों रोता है। तो क्या हुआ कि ये लोग चले, चले तो वो बैठ के शांतामणि दादी उस समय वहां पर टीचर थी, तो जाके उन्होंने पूछा बच्चा मर गया दुख हुआ, अपने आपस में उन लोगों की बातें चल रही थी ये वो, तो मेरे से तो पूछे ही नहीं कुछ। जब योग लगाना शुरू हुआ तो इन्होंने कहा आपने गीता पढ़ी है, मैंने कहा नहीं, कहा रामायण पढ़ी है, मैंने कहा नहीं, कहा भागवत पढ़ी, मैंने कहा नहीं, कोरा कागज की बोला पढ़ा ही नहीं था ना, ABCD पढ़ी हो तो पूछो, हाँ पढ़ी है, 100 तो गिनती आती आती है ना, ये तब तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो उन्होंने कहा अच्छा योग लगाना है, मैं भले लगाओ, तो कहीं ऐसे बैठना है तो कैसे बैठोगी, मैं पालथी मार के बैठ गई ऐसे बैठूंगी, बोला मन में क्या कहोगी, मैं कहा वो तो मुझे पता ही नहीं है, शरीर की स्थिति आसन का ज्ञान है। तो फिर उन्होंने उसी समय मुझे ज्ञान दिया तुम आत्मा हो, फिर मैंने कहा ये आत्मा और नाचवान और ये तो, मैंने कहा यही मैं जानने के लिए आई हूँ कि जब आत्मा अमर है, अब मुझे बोलने का मौका पहली बार मिला ना कि जब आत्मा अमर है शरीर नाचवान है मनुष्य क्यों रोता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो सत्य बात है, मनुष्य रोता है ये उसकी गलती है, मैंने कहा ये तो मुझे भी पता उसकी गलती है, पर उसको क्यों ऐसे आता है। फिर मैंने उनके मिसाल बताया, कहा देखो ज्ञान सत्य है, लेकिन ज्ञान कहाँ तक मनुष्य ने धारण किया है कि उसकी अपनी धारणा की बात आती है, और धारणा जब पेपर आता है तभी मनुष्य का पता चलता है कि उसने ज्ञान को कहाँ तक धारण किया हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, उन्होंने धारणा नहीं की है, फिर ज्ञान ही दिया है, लिया है ज्ञान मुझे दिया है। फिर योग में बैठे तो उन्होंने कहा तुम आत्मा जैसे ज्ञान देते हैं वैसे बिठाया। तो जब मैं बैठी आत्मा करके ऐसे, तो मुझे लगा कि मेरे ये जो वृत्तियां है ना उनकी बागडोर किसी ने संभाल ली है, एकदम से जैसे कोई खींच के बैठ जाता है एकाग्रता होती ना, ऐसे मैं सोचने लगी मुझे क्या हो रहा है, मैं ऐसे ऐसे करने लगी। फिर सभी बैठे तो मैं भी बैठी, बैठते ही मैं ध्यान में चली गई। जब मैं ध्यान में गई तो मेरे वहां जिस दुर्गा की मूर्ति की पूजा होती थी वही प्रतिमा मेरे सामने आई और आकर कहती आओ आओ यही समय आने का है, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, ऐसे जैसे बोल रही मैं सुन रही हूँ, और मैं भी मैं कहती हाँ मैं आ रही हूँ। फिर पता नहीं मुझे अपनी लौकिक माँ का क्या लाता है, मैं कहा मैं नहीं आना मेरी माँ रोएगी, मुझे अपनी माँ से बड़ा मोह था, मैं कहा मैं नहीं आना मेरी माँ रोएगी। फिर ये सीन गायब हो जाता तो मतलब ऐसे हुआ। फिर मैंने कहा नहीं मैं तो आऊंगी। खैर जब मैं नीचे आई तो मैंने कहा अच्छा तुम लोग जाओ, मुझे जहाँ आना था वहां मैं आ गई हूँ। तो मेरी बहन बोली नहीं 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 तुम चलो घर, ऐसे कैसे होगा। खैर मैं अपने लोग की घर आई, हमने अपनी माँ को बताया नहीं, लेकिन जब मैं रात में सोई फिर सुबह 3-4 बजे का टाइम था, फिर ये आवाज आई आओ आओ मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। रोज ऐसी आवाज आती थी, नींद खराब हो जाती थी, तो मैं डर गई। मैंने कहा कि पता नहीं मेरा समय आ गया है मरने का, क्या है कि रोज आवाज आती है। तो मैंने सोचा कि शायद मैंने इनके संशय उठाया है ना, आत्मा मरे शरीर नाचवान का, इसलिए मुझे ये ऐसे हो। मैं गई, मैंने कहा भाई जीजाजी तुम्हारी आत्मा अमर हो ना हो, शरीर नाचवान हो ना हो, मेरा कोई मतलब नहीं है, उन बहन जी को बोलो मुझे माफ करे, मुझे जैसे वैसे कर दे ना। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं 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 तुम बहन जी से मिलो। फिर मैं गई बहन जी से मिलने के लिए, बड़ी ताकत इकट्ठी करके मैंने बहन जी को कहा कि बहन जी मेरे अंदर कोई बुरा भाव नहीं था, मैंने तो ऐसे ही कहा क्योंकि ये ज्ञान दिया था, फिर रो रहे थे ना कि आत्मा हमारे शरीर नाचवान है, तो मेरे को समझ में नहीं आया इसलिए मैंने ऐसे आपसे पूछा, बाकी मैं इस बातों में जाना नहीं चाहती हूँ, आप मुझे जैसे थी मैं वैसे मुझे कर दीजिए। मुझे कहा तो वो हुआ क्या है, तो मैंने कहा जैसे मैं यहाँ से गई हूँ मुझे 3-4 बजे यही आवाज आती, मुझे कोई हिलाता है कहता आओ आओ यही समय आने का है, वो दिखाई तो देता ही नहीं है, उस मुझे उठा के और ऐसे बोलता है और चला जाता है। मेरी नींद खराब हो गई है, मेरे को तो खाने नहीं अच्छा लगता है, घर में भी डर लगता है कि मैं अपनी माँ को कैसे सुना, कहते नहीं भगवान की तुम्हारे पर कृपा है, मैंने कहा मुझे ऐसी कृपा पर नहीं चाहिए, मैं तो जैसी थी वैसी मुझे कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए कृपा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ज्ञान सीखो योग सीखो मैंने कहा बाबा मैं ज्ञान योग सीखने नहीं, नहीं है, मुझे जैसे ही वैसे कर दीजिए आप, मुझे नहीं चाहिए ज्ञान और योग। तो उन्होंने कहा नहीं 7 दिन का आप लेसन करिए। मैंने कहा 1 दिन में मेरा ये हाल हो गया, 7 दिन में क्या होगा, मैं नहीं, मैं बहुत रोई मतलब कि मैं नहीं आना है। तो इन्होंने कहा नहीं 7 दिन का, तो मैं कहा चलो भाई छूटना है इस बात से तो 7 दिन का करो। मैंने ऐसे ही अपनी माँ को हल्की रीति से बोला ऐसे, कहा वहाँ मत जाना, कभी मत जाना तुम। अब घर से भी मनाई हो गई कि वहाँ मत जाना, इनकी आइडिया मेरे को मिल गई। अब मैं छिप के कभी जाऊँ, 2 मिनट योग लगाऊं फिर चली आऊं, समय नहीं होता था ना ऐसे। 7 दिन के सब वो लेसन है जो आज तक मैं ऐसी उसमें फंसी हुई हूँ। तो मेरा वो नियम हो गया कि वो हाथ लगा के चले आने वाली बात हो गई, क्योंकि घर से तो कोई होता नहीं था और ऐसे अकेली जाती थी। तो ज्ञान क्या वो मुझे समझ में नहीं आया, बस योग लगा के चली आती थी कि ये जो हिसाब किताब है वो थोड़ा चित्त हो जाएगा। बस यही पता था भगवान आया है और ये ज्ञान दे रहा है, तो सिर्फ ज्ञान नहीं था, तो बस इतना ये याद आ गया कि भगवान आया है, फिर वो भगवान से मिलेंगे, भगवान कहाँ है कैसे ये भी कुछ इतना पता नहीं था कि बाबा है ये मम्मा है भगवान है। तो मैं ऐसे समझ बैठी थी कि बाबा ही भगवान है, ये ब्रह्मा बाबा है ना ये भगवान है। तो उस समय समझो मेरा जन्म तो ऐसे हो गया और ऐसे बीच में आना जाना ऐसे रखा रहता था। तो एक बार वैसे हमको वहाँ दूसरा भी एक सेंटर था, वहाँ मनोहर दादी रहती थी। तो क्या हुआ, मनोहर दादी आई, मैं वहाँ योग लगा के आ रही थी, तो मनोहर दादी मुझे कहती है कि कब से आती है। शांतामयी दादी कहती थोड़ी दिन में। कहती अच्छा, कहती है कि देखो विनाश आ रहा है, सारी दुनिया विनाश हो जाएगी, भगवान की गोद ले लो वारिस बन जाएंगी, नहीं तो जहाँ जहाँ भगवान के पैर पड़ेंगे वो दुनिया विनाश होती जाएगी। कुछ ऐसा कहा, मैंने कहा ये तो बड़ी बुरी बात है कि मैं भगवान आया उसकी गोद न लूं दुनिया विनाश हो जाए। कि अब मेरे अंदर ये बैठ गया दुनिया विनाश होनी है, भगवान आया गोद ले लो। मैंने कहा एक तीर उसने मारा, दूसरा तीर उसने मारा, अब भगवान की गोद कैसे लूं। घर वाले तो जाने नहीं देते थे, कहते क्या है? तो क्या हुआ, वहाँ बहुत सिंधी लोग रहते थे ना, तो सारे पिछली ओम मंडली को भी जानते थे। तो जब उनको धीरे धीरे पता होता था ये ओम मंडली में है ना, तो मुझे उल्टी उल्टी बातें सुनाने लगे, मत जाना वो जादू करती हैं, वो भगा लेती हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनाने लगे। आखिर है क्या, एक जगह क्या सुनते क्या, तो क्या होता था फिर मेरे अंदर आज देखी क्या है, मुझे भगाएंगी कैसे भगाएंगी मैं देखू तो सही। तो क्या होता था उस समय की स्टेज ऐसी थी कि जो बाबा कहते ना त्याग तपस्या सेवा, तो उस समय ऐसा था कि प्रैक्टिकल में त्याग तपस्या सेवा का बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना पाठ चल रहा था। बहनों के सेंटर्स होते थे, वही गद्दी रात में सुबह देखो तो बाबा की गद्दी बन जाती थी और रात में देखो सबके बिस्तरे बन जाते थे। अच्छा रिकॉर्ड होते ही नहीं थे, बहने गीत गाती थी और योग लगता था और भोग लगता था, सब ऐसे ही होता था। और जब और त्याग जो उनको दे दो खाने, तो एक बार ऐसे बहन ने खाना खा ली थी, उस समय मैं जाकर पहुंच गई तो शांतामणि दादी कहती लोग तुम भी खाओ, कहता नहीं मैंने खाया, नहीं खाओ बाबा का भोग है मैंने खाया। तो ये चुकंदर होता ना बीटरूट, हमने तो इसकी सब्जी कभी खाई नहीं थी, ये बीटरूट की सब्जी उन्होंने दी, कहा खाओ। तो मेरे तो ऐसे भी खाने पीने के मामले में नाजुक थी, तो गले के नीचे छटके नहीं, तो मैंने कहा नमक भी नहीं है ये नहीं, कैसे। कहते हैं हम त्यागी लोग हैं, हमको जो कोई कुछ दे देता है वो हम खा लेते। अच्छा, तो मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगा कि ये बीटरूट की भाजी कोई दे गया और ये खा लिया। खैर हमने कहा ठीक है अच्छा। अब फिर क्या हुआ, तो जहाँ हम रहते थे ना उसके नीचे सब्जी वाला रहता था, तो हमारी गैलरी थी ना, तो वहाँ वो सब्जी के टोकरे रखता था। तो मैंने कहा देखो तुम जाके वहाँ थोड़ी सब्जी दे आया करो। कहता पैसा कौन देगा? मैंने कहा पैसा कौन देगा, क्या तुम हमारे वहाँ सब्जी रखता नहीं है? इसका किराया नहीं लगेगा, तुम नहीं देगा तो हम तुम्हारी उठा के ले जाया करूंगी। उसको कह दिया। और जो सब्जी आती थी ना, मैं उस टोकरे में से एक एक सब सब्जी, मतलब एक आलू नहीं, आलू उठाऊंगी तो 5-6 आलू उठाऊंगी, गोभी उठाऊंगी तो 2 उठाऊंगी, ऐसे मैं थैला भर के ले जाती थी। वो मुझे देखते ही रहता था। मैं कहती इसका हिसाब किताब इसका भी तो बन जाएगा ना। वो मुझे कहता नहीं तो मैं ले जाती हूँ। मैं कहना अच्छा ये सब्जी बनाओ और खाओ। तो क्या हुआ कि समझो मैं थोड़ा थोड़ा ज्ञान में ऐसे चलने लगी और मुझे बहनें बहुत अच्छी लगती थी। जब मैं जाऊं समय भी समय जाऊं तो ये बहनें मुझे एक एक स्टेज से बड़ी ऊंची 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 लगती थी। तो मेरे को आता था कि दुनिया क्या कितनी भगा ले जाएंगी। और ऐसे तो जब ये दो बहनें आपस में मिलती थी ना तो सिंधी में बात करती थी। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं मेरे भगाने का प्लान बना रही हो? तो इससे मैं सावधान हो जाती थी। और जो ये वर्ड बोलती थी ना वो मैं कैच करके ले आती थी। तो जो हमारा सीधा वो राशन देने वाला था ना वो सिंधी था, फिर मैं उसको पूछती थी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका वो फिर सुनाता था तो राइट निकलता था, ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर ये सिंधी में मुरली सुनाती थी। मैं कहा ऐसा तो नहीं मुझे कुछ और सुना रही हो, पढ़ इसमें कुछ और लिखा हुआ हो। तो एक बार मैं उनकी मुरली भी उठा के ले आई। मैंने कहा इसको पढ़ो, उससे ही मैं पढ़ाती थी। कहता भगवान वाच्य ओम शांति और शिव भगवान वाच्य और ऐसे ऐसे। कहते ये कहाँ से ले आई हो तुम? मैं कहने मैं सिर्फ पढ़ने के लिए लाई, मुझे सुनाओ उसने क्या लिखा है पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा जब मैं इसको देखूं तो ये तो उल्टी उल्टी बातें मुझे सुना रहे हैं, ये तो सारी बातें बहुत अच्छी ज्ञान की है। तो मतलब मेरी दृष्टि में ये बहुत ऊंची 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 होती गई ना। और जो लोग सुनाते थे ना वो मेरे को तो अभी उनके लिए खराब लगने लगा। तो जिसमें पुराने सिंधी भी थे ऐसे वैसे भी थे, तो हम भी उनको कहते थे तुम उल्टी बातें क्यों करते हो? मैं अपनी आंखों से देखा वो तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं तो हमेशा अच्छे ही जाके देखती थी। खैर ऐसे चलते चलते थोड़ा समय बीता। मैं मेरे अंदर ये हुआ कि भगवान आया, भगवान से एक बार तो मिल लेना, गोद ले लेनी चाहिए, फिर चाहे विनाश हो जाए क्योंकि मैं वारिस तो बन जाऊंगी ना। अब मैं युक्ति रचने कैसे में जाऊं? तो धीरे धीरे मेरे घर वालों को पता चलने लगा कि मैं ज्ञान में जाने लगी हूँ। तो उन्होंने थोड़े थोड़े बंधन डालने शुरू कर दिए। और जितने मेरे को बंधन होते थे ना उतनी मेरी जो लगन थी ना वो बहुत तीव्र होती गई। और ये बाबा का कमाल था कि मुझे आत्मा का ज्ञान इतना पक्का हो गया कि जिसे मैं देखूं मैं आत्मा ही देखूं, ये मेरी माँ है, मैं कितनी बार इसकी माँ बनी हूँ, आज ये मेरी माँ बनी है। अच्छा मैं और उनको मैं दृष्टि देती थी बाकायदे, अपने बाप को भी दृष्टि देती, ये मेरा बाप है, कितनी बार मैं इसकी बाप बनी हूँ 84 जन्मों में। अच्छा इसी तरह मैं स्कूल में पढ़ती थी ना तो ये मेरा टीचर है, कितनी बार मैं इसकी टीचर बनी होंगी। तो मैं जो आंख दृष्टि देती थी ना तो वो कहते आगे नीचे करो, इतना गौर से क्यों देखती हो? पर हमको बहुत नशा चढ़ा हुआ था उन दिनों आत्मा का, इतना पक्का नशा था कि जिसको हम कुछ देखते ही नहीं थे, इंसान तो देखते ही नहीं थे, हम सबको आत्मा देखते और एकदम से ऐसे दृष्टि देते थे ये मेरा बाप। अच्छा और ये था कि योग लगाओगे, बस मुझे एक ये याद है, योग लगाओगे कर्म बंधन टूटेंगे। तो मैं ज्ञान नहीं समझा है, योग लगाना शुरू किया मेरे बंधन टूटेंगे, बस ऐसे दृष्टि दो सबको, ऐसे दृष्टि देती थोड़ी थोड़ी दुनिया की स्मृति होती जाती थी और ये ज्ञान जो था ना वो बहुत प्रबल होता जाता था। तो क्या हुआ मैंने ऐसे मेरा बाप मूड में था तो मैंने उससे कहा मुझे एक बार माउंट आबू भेज तो उसके बाद जो कहोगे मैं मान लूंगा। अच्छा उस समय मैं मैट्रिक में आई थी तो कहा अच्छा एग्जाम दे लो उसके बाद जाना। मैं खुश हो गई, चाहे उसने मुझे बहलाने के लिए कहा पर मैं तो बुद्धि में वही रहा ना, मैं खुश हो गई। बस मैं एग्जाम की तैयारी करने लगी, एग्जाम के समय मैं बीमार हो गई। तो हमारी ये जो बहनें थी ना, किशनी दादी थी, धानी दादी थी, ये सब लखनऊ में होकर आई ना, ये माताएं मुझे बहुत प्यार करती थी। तो मेरा सिर धुला उला के ठीक ठाक करके मुझे एग्जाम के लिए भेज दिया। और मैं मामा ने कहा भले बच्ची तुम एग्जाम दो, तो क्या देना है वो मुझे उतने पॉइंट सिर्फ ध्यान में आते थे जैसे बाबा मदद करता था ना, बाकी क्या हो रहा वो मुझे पता नहीं, क्यों मैं बीमार थी तो बस लिख के दे आती थी। अब वहाँ बाबा की मुझे मदद मिलती थी, बस ये पेपर ये तुम क्वेश्चन है ना ये तुम करके आ जाओ, करके आ गई। घर में पूछा बने का कर आई, पर मेरी बुद्धि जो थी बस 13 अप्रैल मुझे जाना है। सारी तैयारी में बाबा के पास आने की कर रही थी। जब मेरा पेपर पूरा हुआ तो बुखार भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, तो फिर मैंने कहा अच्छा सबसे जाके मैं छुट्टी ले आई, मैं कल माउंट आबू जा रही हूँ छुट्टी दो। अच्छा बहनों ने मुझे सौगात दी ये दी, मैं घर आई मैंने कहा मैं माउंट आबू जा रही हूँ। बोलो तुमको किसने कहा माउंट आबू जाने के लिए, किसे? मैंने कहा भाई तुम आपने तो मुझे छुट्टी दी थी ना। तो कहा कब दी थी? अरे मैंने कहा इतने दिन तारीख को दी थी। कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं कोई नहीं जाना, मैं को मर जाना। वो कह नहीं जाना को मैं जाना। जीजा जी को भी तैयार कराई टिकट थी, क्योंकि ऐसे अकेले नहीं जाने देते, तो जीजा जी को तैयार कर लिया है। बहुत मैं पैर पकड़ लिए, बस एक बार मुझे जाने दो, फिर जैसे कहोगे वैसे मैं चलूंगी। अच्छा भाई जाओ। अब मैं चली तो सही, लेकिन 12 साल तक मैं अपनी माँ के पास ही रही ना, कहीं बाहर गई नहीं ना। जो तब ट्रेन जब तक नहीं चली थी तब तक मैं बहुत अच्छी थी, बड़ी खुशी खुशी चली। जब ट्रेन चली तो मैंने रोना शुरू किया। मुझे अपनी माँ याद आने लगी, सोने का समय था, खाने का समय था। खैर जैसे तैसे रोते गाते दिल्ली पहुंचे, तो वहाँ दिल्ली में बहनें थी, सबने मुझे बहुत प्यार किया, छोटी करी, खाना वाना खिलाया। रात की गाड़ी से जाना होता था, सारा दिन दिल्ली में रहे आए। तो मैं आपको एक बात यहाँ बताना भूल गई कि हमारी शांतामणि दादी है ना, ये पहले ध्यान में जाती थी और बाबा इनके तन में आता था। तो जब मैं 5-6 दिन के बाद पहली बार सभा के अंदर आई ना, तो बाबा आया हुआ था, मैंने तो देखा ही नहीं था, ये न क्लास देखी थी नहीं, क्योंकि मैं समय बेसमय जाती थी। तो जब मैं आई ना तो बाबा ने मुझे, मैं बैठी आके बाबा ने मुझे बुलाया, आओ देखो ये मोहिनी आई। और उस दिन से मैं मोहिनी हो गई, किसी को मेरे पहले नाम का पता ही नहीं कि पहला नाम मेरा क्या था, मैं मोहिनी हो गई। तब से मेरे क्या मेरा पहला नाम था कामिनी। अच्छा क्या होता था, नाम भी मैं बहुत चेंज करती रहती थी। पहले मेरा नाम था कमल, तो एक आए तो उन्होंने कहा माने पानी मल माने गंदगी, जो गंदगी में पैदा होता वो कमल। मेरे का ये अच्छा नाम नहीं, चेंज करो है ना। फिर मैं ऐसे नाम चेंज कर देती थी। फिर मेरा नाम ये जो पड़ा ना कामायनी, ये महाप्रसाद जयशंकर प्रसाद है ना, उनका ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो बहुत मशहूर है। तुमका जैसे ये ग्रंथ मशहूर है इतना, वैसे तुम्हारा नाम भी बाला होगा ऐसे। तो मैंने कहा ये ठीक है, भगवान ने मुझे नाम दिया मोहिनी, बस मैं मोहिनी हो गई। किसी को मुझे पहले नाम का पता ही नहीं था, मुझे मोहिनी मोहिनी कहे। अब भगवान ने मुझे पहले दिन मर्जीवा बना दिया, नाम भी नया दे दिया और अपना भी बना लिया। तो जब मैं बाबा के पास में आई, बहुत मेरे को खुशी, मैं बाबा के पास जा रही हूँ। तो जैसे ही उन दिनों अम्बाजी का मेला था, तो मेरी बस जरा लेट आई थी, तो रात में सब बाबा अपने बच्चों के साथ में बैठा हुआ था, मामा भी थी। तो जैसे मैं कमरे के अंदर आई, मैंने इतना सुना, अरे मामा ये तो देवकन्या आई है, भगवान ने दूसरा नाम मुझे दिया